जिन संत जी ने, महात्मा जी ने मुझे पुणे बुलाया था, वह सूरत से आए हुए थे। सूरत के पास एक छोटी सी जगह, वहाँ उनका आश्रम है, वह वहाँ से पधारे थे, मैं इधर से गया था। मुझे उनके कार्यक्रम का पता नहीं था, वहाँ जाके पता लगा कि वह 5 को ही प्रस्थान अर्थात कल प्रस्थान करेंगे। ऐसा बोध होते ही फिर मैंने भी अपना कार्यक्रम बदल दिया। एक दिन पहले आप सबकी सेवा में उपस्थित हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने आज बिना अर्जुन के प्रश्न के गीता जी के 9वें अध्याय का शुभारंभ किया है। राजविद्या राजगुह्य योग नामक 9वां अध्याय अति महत्वपूर्ण अध्याय। मानो भगवान कुछ देने को उतावले हैं। कोई प्रश्न अर्जुन का नहीं है। सामान्यतः शिष्य पूछता है तो गुरु महाराज देते हैं, बतलाते हैं, लेकिन इस अध्याय में शिष्य का कोई प्रश्न नहीं है। भगवान श्री देने को उतावले हैं और कहते हैं, पार्थ तुझ निंदा रहित को, ब्रह्म विद्या दिव्य सज्जनु पात्र देख के दी जाती है, योग्य अधिकारी को दी जाती है। क्या योग्यताएं हैं? भगवान श्री अर्जुन को संबोधित करते हैं तुझ निंदा रहित को। कई सारे अर्थ इसके हो सकते हैं। एक तो ये, तेरे अपने अंदर कोई ऐसा दुर्गुण या दोष नहीं जिसकी निंदा की जा सके, तुझ निंदा रहित को, तो निर्दोष है, निष्पाप है, ये बहुत बड़ी पात्रता है। इसका अर्थ ये भी लिया जा सकता है, तू दूसरों की आलोचना निंदा नहीं करता। गीता जी पे शब्द संस्कृत में असूया लिखा हुआ है। मानो तेरे अंदर सामान्यतः दूसरों के दोष हम वर्णन करते हैं तो उसे आलोचना या निंदा कहा जाता है। असूया उससे भी ऊपर है। दूसरों के गुणों को दुर्गुण वर्णन करना ये असूया है। जिसमें ये दुर्गुण नहीं है, घोर दुर्गुण है, गुण है उसमें, लेकिन इसके आंखों का दोष देखिएगा, इसे दुर्गुण दिखाई दे रहे हैं और वह दुर्गुण वर्णन कर रहा है। जिसके अंदर ये दोष नहीं है उसे ही अनसूया कहा जाता है। जब तक अनसूया हमारे जीवन में नहीं आती, भक्ति रूपी मंदाग्नि का प्रवाह हमारे जीवन में नहीं हो सकता। तुझ निंदा रहित को मैं ये परम गोपनीय गुह्यतम अति गोपनीय विद्या बताऊंगा, जिसे जानकर तू सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। कैसी विद्या है देवियों सज्जनों? ये ब्रह्म विद्या, ये ब्रह्म ज्ञान, जानकारी मात्र से व्यक्ति पापों से मुक्त, बंधनों से मुक्त हो जाता है। संसार में दूसरी ऐसी विद्या कोई नहीं है। अतएव संत महात्मा अन्य विद्याओं को अविद्याएं कहते हैं। विद्या सिर्फ ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान। कैसा ज्ञान? मात्र जानकारी से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, आनंद की प्राप्ति हो जाती है, आप निर्बंध हो जाते हैं। थोड़े थोड़े दृष्टांतों के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति के जेब में बहुत अनमोल हीरा पड़ा हुआ है, उसे जानकारी नहीं है, अतएव कंगाली के दिन, गरीबी के दिन व्यतीत कर रहा है। रहने के लिए उसके पास घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, ओढ़ने के लिए कपड़ा नहीं है, हालांकि उसकी जेब में एक अनमोल रत्न पड़ा हुआ है, लेकिन जानकारी ही नहीं है कि ये इतना अनमोल है और ये मेरे पास है, मैं इसका मालिक हूं, इसलिए कंगाली बने हुए हैं। जीवन लगभग व्यतीत हो गया है। आज किसी संत महात्मा की कृपा हुई, परमेश्वर की कृपा हुई, उसने कहा कि अपनी जेब को टटोल के तो देख तेरी जेब में क्या है। कांच, कहा कांच है, बहुत देर से इसे संभाले हुए हूं, अरे मूर्ख ये कांच नहीं है, जा किसी संत की शरण में जा, किसी जौहरी के पास जा, संत गुरु अर्थात जौहरी, जो इस रत्न का मूल्य जानने वाला है, वह तुम्हें बताएगा कि ये क्या है। जैसे ही उसे ये बोध होता है कि मेरे पास लाखों की संपत्ति मेरी जेब में सारी जिंदगी भर पड़ी रही, इतनी जानकारी ही उसे खुशी से नाचने वाला बना देती है, सारे बंधन उसके टूट जाते हैं, उसकी सब प्रकार की गरीबी दूर हो जाती है, मात्र जानकारी से कि एक अनमोल चीज मेरे पास है। ये तो अनमोल से अनमोल विद्या है, ब्रह्म विद्या। भगवान श्री कहते हैं पार्थ, मात्र जानने से तो निष्पाप हो जाएगा, तेरे सारे के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये ब्रह्म विद्या क्या है भगवान श्री समझाते हैं। सर्वप्रथम साधकों, पात्रता की ओर हमें बहुत दृष्टि अपनी डालने की जरूरत है। एक तो व्यक्ति निर्दोष निष्पाप, आलोचना नहीं करता, निंदा नहीं करता, चुगली नहीं करता, श्रद्धालु है, विनम्र है, सेवक है। इस सब बातें मैं थोड़ी थोड़ी वर्णन कर रहा हूं, इस सब बातें यदि किसी साधक सेवक में हो तो वह इस ज्ञान का पात्र बन सकेगा, अन्यथा नहीं। ये ज्ञान की शर्त है। भक्ति में कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, भक्ति में ऐसी कोई शर्त नहीं है, लेकिन ब्रह्म विद्या में ये सब शर्तें हैं। इन शर्तों के बिना आपको ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं हो सकती, आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के अधिकारी या पात्र नहीं बन सकते। यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट टू, आपकी बुद्धि बड़ी कुशाग्र, इसको समझने वाली, इसको ग्रहण करने वाली, इसको ग्रास्प करने वाली होनी चाहिए। अनेक सारी शर्तें। एक संत के पास बहुत अमूल्य रत्न था, राजा साहब को पता लगा। संत क्या करेगा, साधु क्या करेगा, इसको ये रत्न तो मेरे पास होना चाहिए, मेरे खजाने में होना चाहिए। उन्हें बुलवा भेजा, महात्मन मैंने सुना है आपके पास बहुत अनमोल रत्न है। हाँ है, आप क्या करोगे, मुझे दे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगा। मत सोचिएगा कि उसे रत्न के साथ आसक्ति है, लेकिन इनकार कर रहा है। मैं जबरदस्ती छीन लूंगा, आप कुछ भी करो राजा साहब, फिर मैं रत्न नहीं दूंगा। यदि आपने 8 दिन के अंदर अंदर मुझे यत्र न दिया तो मैं तुम्हें फांसी की सजा दूंगा, तब तक तू जेल में बंद था। तू कुछ भी कर ले राजा, मुझे जेल में बंद कर या मुझे फांसी की सजा दे 8 दिन के बाद, पर मैं ये अनमोल रत्न देख मेरे पास है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। साधु को जेल में बंद कर दिया है। मंत्री महोदय ने राजा को समझाया, राजन बहुत बड़ी भूल की है आपने, किसी से इस प्रकार से चीज छीनने अपराध है, पाप है, वह चाहे राजा ही क्यों ना करे, पाप है, आपने बहुत गलत काम किया है। हां, तुम्हें किसी संत महात्मा से या किसी बड़े से कोई चीज लेनी है तो इसकी युक्ति आनी चाहिए, वह युक्ति तो प्रयोग नहीं कर रहा। जा उस संत महात्मा की सेवा कर, श्रद्धापूर्वक उसके पास जा, उसको नमस्कार कर, उसकी सेवा शुश्रूषा कर, हो सकता है कुछ दिनों के बाद प्रसन्न होकर तुम्हें वह अनमोल रत्न अपने आप ही दे दे। आज राजा साहब वेश बदल के तो जेल में चले गए हैं, द्वार खुलवाया है, संत के पास जाके बैठ गए हैं, जाके उनके चरण दबाने शुरू किए, मालिश इत्यादि करनी शुरू की, भोजन कहाँ से आना है, कैसे आना है, जूठे बर्तन इत्यादि साफ करने शुरू किए और कहा, महात्मन मुझे माफ करना, मैं ये निंदा नहीं कर रहा, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, पर लगता है यहाँ का राजा बड़ा क्रूर है, बड़ा अन्यायी है, ये राजा ही बना हुआ है, वेशधारी राजा कह रहा है यहाँ का राजा बहुत अन्यायी है, बड़ा क्रूर है, उसकी मति भ्रष्ट हो गई है, बिना वजह तुम्हें बंदी बना दिया हुआ है। सुन लिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं। कुछ दिनों के बाद, सेवा शुश्रूषा के बाद, राजा ने देखा जो कोई भी है ये, मुझे उससे क्या लेना देना है, सेवक है, श्रद्धालु है, विनम्र है, मुझ जैसे व्यक्ति की, मुझ जैसे भिखारी की कौन सेवा करता है, पर इसके अंदर सेवा भाव है, स्वार्थ है या नहीं है परमात्मा जाने, पर इस वक्त तो मैं सेवा कर रहा है, इसके अंदर विनम्रता है, मेरे जूठे बर्तन साफ करता है, मुझे लंगर में खाना खाने के लिए नहीं जाने देता, मेरा खाना यहीं लाके मुझे दे देता है, इत्यादि इत्यादि। संतों को क्या प्रसन्न करना, क्या दे जाना, छोटी छोटी बातों पर बैठे जाते हैं। अतएव संत ने अपनी जेब में से रत्न निकाल के उसे दे दिया। ये व्यक्ति रत्न लेने के बाद फिर कभी इसने मुंह नहीं दिखाया। आज 8वां दिन है फांसी की सजा का दिन, इन्हें फांसी पर चढ़ाने के लिए फांसी के तख्ते पर ले जाया जा रहा है। आज राजा अपने असली वेश में आए हैं, आके कहा, महात्मन मैंने तुम्हें कहा था ये रत्न मुझे दे दो, इतने दिन से जेल में बैठे हो, गल रहे हो, सड़ रहे हो, आज फांसी मिलने वाली है, अभी भी रत्न दे दो, तुम्हें नहीं दूंगा। कोई ले गया हो तो ले गया होगा, संत कहते हैं जरूर ले गया होगा, लेकिन कोई श्रद्धालु लेके गया होगा, कोई सेवक लेके गया होगा, कोई राजा नहीं, कोई हुक्म देने वाला, आदेश देने वाला नहीं ले सकता इसको, इसको विनम्र ही प्राप्त कर सकता है, सेवक ही प्राप्त कर सकता है, निर्दोष निष्पाप ही प्राप्त कर सकता है। राजा साहब संत के चरणों में अपने मस्तक को रख देते हैं, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति पात्र को, अर्जुन को उन्होंने पात्र चुना है। भक्तजनों, ये पात्रता बहुत जरूरी है। संत ज्ञानेश्वर किसी वृद्धा के पास बैठे हुए हैं, किसी काम से गए हुए हैं। सरल वृद्धा है, सरल स्वभाव की है। अतएव कहा, संत जी, सुना है संत बड़े भोले होते हैं और परमात्मा भी बड़ा भोला है, उसे क्या देखना, ये पात्र है कि कुपात्र है। सबेक को परमात्मा या संत महात्मा गुरु आत्म ज्ञान क्यों नहीं दे देते, क्या जाता है उनका? सबको आत्म ज्ञान बांट दे, सबको आत्म रस बांट दे, चखा दे उन्हें, खूब पिलाएं उन्हें। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, माई तू जैसा कह रही है, परमात्मा एवं संत ऐसे ही होते हैं। देते तो वह सबको एक जैसा ही है, लेकिन सबको एक जैसा लेना नहीं आता। संत की पेचीदा बातें सुनिएगा, देता तो देने वाला तो एक जैसा ही देता है, लेकिन सबको एक जैसा लेना नहीं आता। सबकी पात्रता अर्थात भिन्न भिन्न है। किसी का पात्र बहुत छोटा है, चम्मच जैसा, तो उसमें उसको सागर में डाल दो तो भी एक चम्मच पानी ही निकलेगा, सागर में है। तो पात्रता सबकी भिन्न भिन्न है माता, सबको लेना नहीं आता। संतों महात्माओं को, परमात्मा को ये क्या देखना, लेना आता है कि नहीं आता, क्या फर्क पड़ता है, उनके पास तो भंडार है, उनको सबको बांट देना चाहिए। इतनी देर में एक भिखारी आ गया, आके भिक्षा मांगी, एक रुपया मांगा, उसे निकाल दिया बाहर। सुबह सुबह आ गए हैं, देखती रही कि मैं इस वक्त संत महात्मा के पास बैठी हुई हूं, इत्यादि इत्यादि, मानो जैसे शब्दों के धक्के मार के उसे बाहर निकाल दिया, बेचारा चला गया। संत ज्ञानेश्वर ने चुप करके कहा, भाई आया तो मैं भी भीख मांगने ही था, मैं अमुक गांव में एक बहुत बड़ा भंडारा कर रहा हूं, मुझे मेहरबानी करके एक अपनी कलाई का कंगन दे दे तो मैं भंडारा कर सकूंगा। माई ने चारों के चारों उतार के तो दे दी है। बहुत अचंभित हूं माई, उस भिखारी ने एक रुपया मांगा, तूने उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया, मैंने एक कंगन मांगा और आपने मुझे चार दे दिए है। कहा, वो तो व्यवसायी है, प्रोफेशनल है, उसका भीख मांगना काम है, मैं तो भिखारी है, उसको देके क्या करूंगी। एक संत को देके तो जो आनंद आएगा, जो पुण्य प्राप्त करूंगी, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। तब संत ज्ञानेश्वर ने कहा, माई भौतिक चीज देने के लिए तू पात्रता देखती है, तो परमात्मा ने अपना सब कुछ देना है, क्या वह पात्रता नहीं देखेगा? ब्रह्म विद्या पात्र को मिलती है, सुपात्र को मिलती है, कुपात्र को नहीं। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।